कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जयपाल चिंचवाड़े, सौभाग्यवती भावना अमित चिंचवाड़े, तन्वी अमित चिंचवाड़े, श्री आश्चिन आदगौंडा पाटिल, सौभाग्यवती शुभांगी आश्विन पाटिल, तन्वी नक्षत्रा, हर्षवर्धन तन्वी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के आनंद की नहीं
आवश्यक
आवश्यक अपरिहार्य भावना की
जय हो। जय परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की
जय हो।
समस्त आचार्य संघ की
जय हो।
तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कारणीभूत भावनाओं में से आज की भावना का नाम है आवश्यक अपरिहानी भावना। आवश्यक और अनावश्यक, इन दोनों विषयों को आज के दिन समझना है। जीवन में आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, इस बारे में सबको सोचना है, सबको विचार करना है और सबको सोच विचार करके आवश्यक की क्रिया में लगना है और अनावश्यक की क्रिया में नहीं लगना है। या तो लग रहे हों तो उसको आवश्यक अनावश्यक समझने का प्रयास करना है। हम सभी आर्यखंड की धरती में जन्म लिए हुए मनुष्य हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको आर्यखंड मिला। हम सभी भगवान महावीर के तीर्थ में जन्मे। जो अंतिम तीर्थ प्रवर्तक थे उनके तीर्थ में जन्मे और उनके तीर्थ में रहने वाले जो उनके साक्षात रहने पर रहते थे वहाँ पर भी चतुसंगता की नहीं, वहाँ पर भी चतुसंगता और लगातार भगवान महावीर के निर्वाण होने के पश्चात भी चतुसंग सतत इस धरती पर विद्यमान है। ऐसे ही सभा में बैठे रहते थे भगवान महावीर की सभा में, और उनकी दिव्य ध्वनि जब खिरती थी लोगों को इतना आनंद आता था कि उनको भूख प्यास तो लगती ही नहीं थी पर नींद भी नहीं आती थी। और नींद भी उस दिव्य ध्वनि को सुनने वाले से प्रभावित हो गई थी। दिव्य ध्वनि के सुनने वाले के मन में इतनी विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि के प्रभाव से वह नींद भी कुछ समय के लिए सुनने वाले को छोड़कर दूर जा कर के बैठती थी। ऐसा प्रभाव था। और उस समोचरण में भगवान महावीर की जो वाणी सुनते थे लोग, क्या सुनते थे? यही सुनते थे, हमको आर्यखंड मिला, भगवान बता रहे हैं। आर्यखंड में हम जन्मे और आर्यखंड में जन्म लेने के कारण से हम सब आर्य हैं, मिलिच तो है नहीं। आर्यखंड में जन्म लेने मात्र से हम आर्य हैं और हम सब आर्यों को भगवान का उपदेश मिल रहा है कि हमको क्या आवश्यक और क्या अनावश्यक, हमको क्या आवश्यक समझना और क्या अनावश्यक समझना। यह बात दिव्य ध्वनि के माध्यम से हर रोज घिरती थी। इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं पूछ लूं कि भगवान महावीर ने ऐसे समो शरण में विराजमान होकर उन भव्य जीवों को कौन से आवश्यक बात की ओर आकर्षण करते थे और कौन सा अनावश्यक था लोगों के लिए जिससे वे उनको रोकते थे, इधर मत जाओ इधर जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है ये रास्ता ठीक है, इधर कांटे कंकर हैं और इधर तो टार रोड है। ऐसे बताते थे। साक्षात भगवान महावीर ने भी आवश्यक अनावश्यक के बारे में समझाया और समझने वाले समझ जाते थे और आवश्यक क्रियाओं को ग्रहण करते थे, अनावश्यक क्रियाओं से बचते थे। चौबीस घंटे में यदि हमारे जीवन का परिशीलन किया जाए कि 24 घंटे में हम आवश्यक क्रियाओं को ज्यादा करते हैं कि अनावश्यक क्रियाओं को ज्यादा करते हैं, मतलब अनावश्यक क्रियाओं से आप परिचित हैं इसलिए तुरंत सबके मुख से निकला, सबके मुख से निकल रहा है, अनावश्यक क्रियाएं हम सबसे ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, अनावश्यक क्रियाओं को आप बहुत करते हैं, लेकिन अनावश्यक क्रियाओं को करते समय आप यदि कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पुण्याश्रव आता होगा क्या पापाश्रव आता होगा, इसका विचार करना है। अनावश्यक क्रियाओं को करते समय पाप होगा क्या पुण्य होगा? पाप होगा। क्यों होगा? वे क्रियाएं शुभ होती हैं क्या अशुभ होती हैं? शुभ होती हैं, अशुभ होती हैं। तो 24 घंटे में से अशुभ क्रियाओं को करने के लिए जो हमारा समय लग जाता है, वह समय समय के लिए मिला था, आत्मा के लिए मिला था, समय को समय सार बनने के लिए मिला था, और हम अपने समय को अशुभ क्रियाओं में दे देते हैं तो हमारा पूरा ज़्यादा से ज़्यादा दिन का पूरा समय अनावश्यक क्रियाओं में निकलता है। संसार का आप कोई भी कार्य करो, वो सब अशुभ आश्रव है, कोई भी करो। और धर्म का कोई भी क्रिया करो, वो शुभ की कोटि में आता है। आत्मा को अशुभ से बचाकर शुभ में लगाए रखना, ये आवश्यक क्रिया है। जब देखो तब अंतरंग शुभ में विद्यमान रहना चाहिए। आत्मा का उपयोग, आत्मा का ज्ञानोपयोग निरंतर शुभोपयोग में रहे और अशुभ योग से बचे। उपयोग को निरंतर बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है योग जो अशुभ होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति सांसारिक क्रियाओं में लग करके शुभ पापस्य शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ मन वचन काय के योग से पुण्याश्रय होता है और अशुभ मन वचन काय से पापाश्रय होता है। ये योग की प्रवृत्ति कहलाती है। हमारी क्रिया, हमारा काय, हमारी काया, हमारे वचन और हमारा मन, ये यदि सांसारिक क्रिया में लगे हुए हैं तो हमारा योग अशुभ माना जाता है। और इस योग को उद्देश्य बना करके आज के दिन का जो उपदेश है, इस उपदेश को आवश्यक अपरिहानी भावना के रूप में समझाया गया है। मन वचन और काय, जब जब हम सांसारिक क्रियाकलापों में उलझे रहते हैं तब अशुभ ही रहते हैं। अशुभ होने के कारण से पापाश्रव का यह योग कारण बनता है। और भले ही हम सम्यक दृष्टि क्यों न हो, भले ही हम शुभोपयोगी क्यों न हो, हमारे पास निरंतर सम्यक तो विद्यमान क्यों न हो, 24 घंटा सम्यक दर्शन विद्यमान है तो 24 घंटा शुभोपयोगी है। हम शुभोपयोग का तात्पर्य ये है कि निरंतर सम्यक दर्शन रूपी धर्म में लगा हुआ जो ज्ञानोपयोग है वह शुभोपयोग है। निरंतर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में लगा हुआ जो ज्ञानोपयोग है वह ज्ञानोपयोग सम्यक दर्शन को तो त्याग नहीं करता है ना। जब आप भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं, कोई व्यवसाय उद्योग करते हैं, पाप की क्रियाएं होती हैं, उस समय क्या सम्यक दर्शन नष्ट होगा? क्या ज्ञानोपयोग अशुभ में आ जाएगा? ज्ञानोपयोग को अशुभ में लाने के लिए मिथ्यात्व की क्रियाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए योग और उपयोग में कितना बड़ा अंतर है, जैन दर्शन समझाता है। योग उपयोग से बहुत अलग है और योग से उपयोग बहुत अलग है। उपयोग का मतलब हमारे पास अनादिकालीन जो ज्ञान की शक्ति और दर्शन की शक्ति है, देखने और जानने की शक्ति है, ये देखने जानने की शक्ति को उपयोग कहते हैं। और योग क्या होता है? योग ये होता है हमारी काया की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति, ये योग कहलाता है। योग भी अशुभ होता है और शुभ भी होता है, और उपयोग भी शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। उपयोग को अशुभ से हटाकर शुभ में लाने के लिए, सुन रहे हैं ध्यान से, बहुत काम की चीज बता रहे हैं इसमें, मतलब समोह शरण में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। और इधर आकर्षित होकर के सुनो, बहुत बड़ी चीज आज दे रहे हैं आपको चिंतन के लिए। उपयोग और योग ये दोनों सबके पास हैं, सबके पास। उपयोग आत्माधीन है और योग आत्म संबंधित है, आत्मा का नहीं। इसका अभाव हो सकता है, योग का अभाव कर सकते हैं। अरहंत भगवान मोक्ष जाते समय योग निरोध किए बिना सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं करते। जो हमसे भिन्न है, अलग हो सकता है, वह तो है योग, लेकिन उपयोग को हम अलग नहीं कर सकते। उपयोग त्रैकालिक है। उपयोग किससे बनता है? ज्ञान से। और ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा को छोड़ करके वो अलग रह नहीं सकता, इसका संबंध अविनाभाव संबंध है। कल कहा था ना, कल के प्रवचन में बहुत अच्छी तरह से चार बातें समझ में आ गई। वो चारों बातें याद है क्या, भूल गए पता नहीं है, याद है कौन कौन से? अविनाभाव संबंध, तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध, क्रमशः बताया आपने। क्रम भी ध्यान में है, सिक्वेंसी है। ये टूट गई तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अविनाभाव संबंध वह होता है जो जीव के साथ त्रैकालिक जिसका संबंध हो वो अविनाभाव संबंध है। उस अविनाभाव संबंध रूप वस्तु को हम वस्तु से अलग नहीं कर सकते। वस्तु से जो वस्तु अलग नहीं होती ही, वह वस्तु अविनाभाव संबंध को प्राप्त वस्तु कहलाती है। जैसे ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। अगर ज्ञान आत्मा से अलग हो गया तो आत्मा जड़ वस्तु बन जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा अचेतन कभी नहीं बन सकता, चेतन वस्तु चेतन ही रहेगी, अचेतन कभी नहीं हो सकती। आत्मा है तो वहां नियम से ज्ञान होगा ही होगा, ज्ञान है तो ज्ञानोपयोग भी होगा, दर्शन गुण है तो आत्मा का है, उसको भी अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते हैं तो उसकी परिणति निरंतर बनी रहेगी। दर्शन है, दर्शन देखने की शक्ति को दर्शन कहते हैं, जानने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और दर्शन, इनकी जो निरंतर परिणति है, परिणमनशील है, पलटन है, इसी को उपयोग कहते हैं। जीवस्य लक्षणम उपयोगः, जीव का जो लक्षण है वह उपयोग है, और यह उपयोग चेतन उपयोग की पहलू दो हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग भी हमारे लिए उपकारक है और ज्ञानोपयोग भी हमारे लिए उपकारक है, लेकिन इसकी धारा भी विपरीत दिशा में चल रही हो तो उस धारा को मोड़ना आवश्यक है। उपयोग की धारा को मोड़ते वक्त हमारे सामने दो तीन प्रकार की अवस्थाएं नजर आती हैं। एक अवस्था वह जिस अवस्था से अनादिकाल से जीव गुजर रहा है, अनादिकाल से गुजर रहा है, वह अवस्था अशुभ अवस्था है। उपयोग की अशुभ अवस्था यह अस्वस्थ अवस्था है। उपयोग अगर बीमार है तो समझना वह अशुभ उपयोग में है। उपयोग अगर बीमार है तो वह अशुभ उपयोग में है, और उपयोग ने अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया तो वह या तो शुभ उपयोग में होता है और या तो शुद्धोपयोग में होता है। और इससे भी आगे आप पूछते हैं, क्या स्वास्थ्य के ये दो ही लक्षण हैं? नहीं, ये स्वास्थ्य के दोनों लक्षण नहीं, ये स्वास्थ्य को सुधरने के लक्षण है। जिसका उपयोग स्वस्थ होने जा रहा है वो दशा है। जैसे आपको रोग ठीक करने के लिए अच्छी औषधि की उपलब्धि हो गई और आपने उसको खाना स्वीकार भी कर दिया, उसका सेवन प्रारंभ हो गया। जैसे ही आपने औषधि को खाना प्रारंभ कर दिया, एकदम ही एक ही दिन में रोग ठीक होता है क्या? नहीं होता है ना, औषधि तो कई दिन तक लेनी पड़ती है, और कई दिन तक लेने के बाद एकदम हम स्वस्थ कहलाते हैं। जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तब क्या औषधि खाते? बोलो, नहीं खाते हैं ना। स्वस्थ होने के बाद औषधि छूट जाती है, भोजन छूटता है क्या? नहीं छोड़ता। भोजन तो बराबर हम करते रहते हैं। हम यदि औषधि खा रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, और यदि हम औषधि नहीं खा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी नहीं है, हम बीमार हैं। तो यहां पर उपयोग की अपेक्षा से आपको ये समझना है आज के दिन, हमारा उपयोग यदि अशुभोपयोग में लगा हुआ है तो क्या क्या करता है मालूम है ना? अपना उपयोग अशुभ में लगते ही वह अपने आत्म कल्याणकारी परमार्थ के कार्यों को बिल्कुल नहीं करता। आत्म कल्याणकारी परमार्थ के कार्यों को बिल्कुल नहीं करता और वह आत्मा के कल्याण को छोड़कर सब कुछ करता है, यह भी करता है। हाँ, अगर आप आत्म कल्याण चाहते हैं तो हमारे पास सब कुछ सामग्री रखी हुई है आपके लिए, जो भी औषधि चाहिए, जो भी बातें चाहिए, शास्त्र चाहिए शास्त्र देंगे, सब देंगे, लेकिन आप ले लो, आप कल्याण करो, हम नहीं करेंगे। अशुभोपयोग से जब हम बीमार होते हैं उस समय दूसरे के लिए औषधि तो दे सकते हैं लेकिन अपने को औषधि खाने के भाव नहीं आते, और ऐसे गंभीर प्रश्न किसी किसी भव्यात्मा के सामने रहते हैं। दूसरे का तो वह कल्याण कर रहा है लेकिन अपना कल्याण मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसका उत्तर खोज नहीं पाता। और भगवान के समोह शरण में जाकर के वह पूछता है, हे भगवान, मैंने तो कई लोगों का कल्याण कर लिया, आपने जो दिव्य ध्वनि खिराया था सबको हमने सुना दिया, और जिसको भी सुना दिया और मेरे वचनों को सुन करके आपके पास आए, दीक्षा ले लिया, सम्यक दर्शन धारण कर लिया, किसी ने सम्यक तो धारण करके अपना कल्याण के मार्ग पर लग गया, और किसी को संयम धारण करने के भाव हुए तो संयम भी धारण कर लिया, ये अद्भुत हो गया। आपकी वाणी में कितनी ताकत है, आपके औषधि को लेकर के यथावत पहुंचाने पर भी लोगों का कल्याण हो रहा है, लेकिन मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है भगवान, ऐसा प्रश्न पूछता है समूह शरण में एक भव्यात्मा। ऐसे भी जीव होते हैं, हे भगवान, मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, सबका मैं कल्याण कर रहा हूं लेकिन मेरा कल्याण करने के भाव मुझे क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो बताइए। उपयोग की अपेक्षा से यदि सबसे बड़ी बीमारी है तो अशुभोपयोग है, और शुभोपयोग ये बीमारी नहीं, बीमारी की औषधि है। शुभोपयोग को प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को औषधि के रूप में ग्रहण कर लिया है और हमको सम्यक दर्शन धर्म की उपलब्धि हो चुकी है, और यह सम्यक दर्शन मुझे आगे बढ़ाएगा, गुण संपन्न कराएगा। मेरे पास अभी तो सम्यक दर्शन और ज्ञान आ गया है लेकिन संयम आने के लिए यही सम्यक दर्शन कारण बनेगा, मेरी स्वास्थ्य को बनाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यही सम्यक दर्शन रूपी औषधि कारण में कारण बनेगा। तो भगवान के सामने ऐसे भी भव्यात्मा खड़े होकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हम अशुभोपयोग को कैसे छोड़े? तो भगवान कहते हैं, अशुभोपयोग अशुभोपयोग है, वह आत्मा के लिए हेय है, जो हेय होता है उसको त्यागना ही चाहिए, और जो उपादेय होता है उसको ग्रहण करना ही चाहिए। जो हेय होता है वह अनावश्यक होता है और जो उपादेय होता है वह आवश्यक होता है। सम्यक दर्शन धारण करना और सम्यक्त में ही रहना, ये आवश्यक है कि अनावश्यक? आवश्यक है, आवश्यक है। अब आवश्यका अपरिहानी भावना, ये भावना का नाम है। आवश्यका अपरिहानी, अपरिहानी यानी परिआसंबंतात् हानिर्न भवेत्, परि आसमंतात हानिर न भवेत कस्य आवश्यकस्य आवश्यकस्य आवश्यक भूत गुणस्य हानिर न भवेत हानि न हो किसका जो आवश्यक है उसमें कोई हानि न हो। आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है समझ में आ रहा है ना। अशुभोपयोग में लगा हुआ जीव मिथ्यात्व करता है। जीवन के लिए मिथ्यात्व आवश्यक है कि अनावश्यक है? अनावश्यक है। इस अनावश्यक से बचना ही आवश्यक है। अनावश्यक से बचना ही आवश्यक है और अनावश्यक के वशी न होना आवश्यक है। मिथ्यात्व के अंदर हम चले गए तो हम वशी हो गए। मिथ्यात्व के अंदर हम पहुंच गए तो हम वशी हो गए। किसके वशी हो गए? अनावश्यक के वशी हो गए। जिसमें धर्म नहीं था, जिसमें कर्म बंधन नहीं था, उसको छोड़ दिया और मिथ्यात्व के वशी हो गए। आवश्यक को छोड़कर उसके यदि हम वशी हो गए तो हम वशी हो गए, उसके वश में हो गए, उसके गुलाम में हो गए, हम उसके परतंत्र हो गए, सब परतंत्र हो गए। यहाँ का छोड़कर वहीं पहुँच गए, वहीं रहने लगे, वहीं रच पच गए। तो कहते हैं ये रच पचना परिहानि है, ये रच पचना परिहानि है। परि आसमंतात यत्र हानिर्भवति स परिहानि एवं भूता हानि न भवेत कदापि। इस प्रकार की हानि कभी न हो इसके लिए अशुभ से अपने उपयोग को हटा करके शुभ में लगाने के पश्चात फिर हानि नहीं होना चाहिए, दोष नहीं लगना चाहिए, अनाचार दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। परिहानि का मतलब क्या? परिहानि संपूर्ण हानि। सम्यक तो धारण कर लिया था, अब पूरी तरह से छोड़ बैठ गए, इसको परिहानि कहते हैं। परिहानि नहीं होना। परिहानि हो गई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे करोगे? क्षायोपशमिक सम्यक्तो के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। सुन रहे हैं? ध्यान देकर के सुनो, एकाग्र करो थोड़ा मन, मन चंचल होता है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन जिसके पास है उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है क्या नहीं होता? क्षायिक सम्यक दृष्टि को होता है क्या नहीं होता? होता है। तो क्षायोपशम सम्यक्त का काल अधिक है, इसके साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद हम निरंतर कर सकते हैं। जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त न हो तब तक भी इसका बंद होता ही रहता है, क्योंकि आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो देखिए, क्षायोपशमिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, औपशमिक सम्यक्त से ही क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का लाभ हमें हुआ। सबसे पहला होता है औपशमिक सम्यक्त और उसका काल केवल अंतर मुहूर्त, लेकिन जिंदगी भर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जब तक हम तीर्थंकर नहीं बनेंगे, तीर्थंकर बनने के भाव में उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक तीर्थंकर प्रकृति के बंद में कारणीभूत कौन रहेगा? क्षायोपशमिक सम्यक्त रहेगा। और यह क्षायोपशमिक सम्यक्त हमारे साथ में है तो कैसे रहे? परिहानि के रूप में हो या हानि से बच करके हो? परिहानि तो अनाचार है, और जहां पर परिहानि है अनाचार के साथ तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हानि होने नहीं देना, अपने धर्म की हानि इतना भी होने नहीं देना जैसे कि धर्म को छोड़ के ही बैठ गए। और ऐसा धर्म अगर छूट गया ये उपयोगगत धर्म सम्यक्तु धर्म अगर छूट गया, ये सम्यक्तु के कारण से ही हमारा उपयोग शुभ बना था, सम्यक्तु के कारण से ही अपना उपयोग आत्मा का उपयोग शुभ बना था और अशुभ से हटा था, अशुभ से हटा था का मतलब अधर्म से हट गया था। मिथ्या तो अधर्म है और सम्यक दर्शन धर्म है, तो मिथ्या तो अधर्म है तो आवश्यक है कि अनावश्यक? अनावश्यक। और सम्यक तो यदि धर्म है तो आवश्यक क्या अनावश्यक? आवश्यक। तो आवश्यक कार्यों में अपने उपयोग को लगा दिया, अब लगा दिया तो हमारा उपयोग यहाँ रमने लगा। धर्म में रमने वाले उपयोग का नाम ही शुभ उपयोग है। ज्ञानोपयोग का धर्म में रमना ये शुभ उपयोग है, और ज्ञानोपयोग का अधर्म में यानी मिथ्यात्व में रमना अशुभोपयोग है। तो अशुभोपयोग से किस कर्म का बंध होगा? उपयोग अशुभ हो तो किस कर्म का बंध होगा? बोलो ना, नींद तो नहीं कर रहे हो, बोलो। पाप कर्म का अशुभ कर्म का बंध होगा, और यदि अशुभ कर्म का बंध होगा तो वो हमारे लिए आवश्यक है कि अनावश्यक है? देखो, कोई भी किसी भी संसारी प्राणी को पूछो, आपको पुण्य चाहिए क्या पाप चाहिए, ये कहे तो कहता है पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो क्या, ये जरा सोचेंगे इसके लिए। इसके लिए तो सोचेंगे, पाप को छोड़ने के लिए जीव 10 बार सोच रहा है, और पुण्य करने के लिए वह तीव्र जिज्ञासा तीव्र इच्छा रखता है, अभी करूंगा अभी करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता। यही दुर्भाग्य है इस आत्मा का। पुण्य को चाहता है और पुण्य के फल की इच्छा भी रखता है, लेकिन पाप को नहीं चाहता, पाप के फल को भी नहीं चाहता। नहीं चाहता हुआ भी निरंतर किसको करता है? पाप को ही निरंतर करता है। 24 घंटे में कितने घंटे तक पाप करता है? ये तो सम्यक दृष्टि भी करता है, क्योंकि जो पाप होते हैं ये पाप योग से भी होते हैं, ये पाप योग से भी होते हैं। योग से जो पाप होता है वह सम्यक दृष्टि का भी अधिक से अधिक समय तक 24 घंटे में बहुभाग वह पाप की क्रिया करता है। योग से मन वचन काय की प्रवृत्ति सांसारिक क्रिया में उलझा हुआ है तो फिर वो उससे पाप का ही आश्रय होता रहता है। पुण्य का आश्रय कब करेगा? जब वह पूजन करेगा, स्वाध्याय करेगा, उपदेश सुनेगा, उस समय दान देगा, किसी के उपकार के बारे में सोच रहा है, उपकार देने को सोच रहा है उस काल में, उस समय में पुण्याश्रव करेगा। ये तो योग संबंधी पुण्याश्रव है। योग संबंधी पुण्याश्रव को कोई भी कर सकता है, लेकिन उपयोग संबंधी जो शुभोपयोग उत्पन्न होने के पश्चात जो पुण्य बंध होता है वह केवल सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि जब भी पुण्य का बंध करेगा, और मिथ्या दृष्टि भी जब भी पुण्य का बंध करेगा तो कैसे? योग को शुभ बना करके, मन वचन काय को संसार में न लगा करके, मंदिर चला गया, पूजन करने लगा, अभिषेक करने लगा, सत्पात्र में दान देने लगा, दान में लग गया, तो उसका योग शुभ होता है, लेकिन उपयोग अशुभ ही रहता है। उपयोग अशुभ रहता है, तो उपयोग अशुभ है और योग शुभ हुआ है, तो यहां पर पापानुबंधी पुण्य का ही आश्रय और बंध होता रहता है, ये सिद्धांत है। जैन दर्शन क्या कहता है? उपयोग तो अशुभ है, मिथ्यात्व में लगा है, मिथ्यात्व की क्रियाओं में उलझा हुआ है, मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व में उलझा हुआ है तो उपयोग आत्मा का ज्ञानोपयोग धर्म को धारण नहीं कर रहा है, शुभोपयोग को धारण नहीं कर रहा है, अशुभोपयोग को धारण कर रहा है, अनायतनों का सेवन कर रहा है, अज्ञानवश अपने आत्मा के स्वरूप को न जानता हुआ वो अनात्मा को ही आत्मा समझकर उसके पीछे लगा हुआ है, उसमें सुख की खोज कर रहा है, सुख ढूंढ रहा है। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो आत्मा है, अशुभोपयोग में लगा हुआ आत्मा यदि मंदिर जाता है तो उसका योग तो शुभ होता है लेकिन उपयोग अशुभ ही रहता है। अनावश्यक आवश्यक के बारे में आज बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है। अशुभ योग और शुभ योग, इसमें आवश्यक कौन और अनावश्यक कौन? देव उत्तर जल्दी जल्दी उत्तर दो, लेट मत करो, टाइम खत्म हो जाता है। हाँ, योग अशुभ है एक शुभ है, इसमें अनावश्यक कौन? अशुभ अनावश्यक, और आवश्यक कौन? शुभ आवश्यक। शुभ योग को आवश्यक समझने के पश्चात भी यदि जीव धर्म धारण कर चुका है, शुभोपयोगी हो चुका है, सब कुछ है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, लेकिन उसका उपयोग भी अशुभ हो सकता है। योग 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 मन वचन का योग अशुभ हो सकता है, तो वह अशुभ योग उस सम्यक दृष्टि जीव से ही पूछा जाए, ये अशुभ योग आवश्यक है या अनावश्यक? तो कहता है अनावश्यक। तो फिर आप सम्यक दृष्टि हो करके भी उसमें कितना समय लग जाता है, कितना समय व्यतीत होता है अशुभ योग के साथ? तो कहता है बहुत जाता है। तो कम करना आवश्यक है क्या नहीं? तो कहता है आवश्यक है, कम करना तो आवश्यक है। तो कितना कम कर सकोगे? तो कहता है आप जितना बताएं उतना, ये हमारा मेरा काम नहीं है, आप बताओ। ये मेरा काम नहीं, आप बताओ कितना कम कर सकते। देखो, जिनको सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो चुकी है वह आत्मा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा धर्मात्मा है, सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जिनको मिथ्यात्व का त्याग हो चुका है और सम्यक्त्व के मार्ग में आया है उनका उपयोग सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। और ऐसे कौन हैं? तो आप जितने भी बैठे हैं ना, जो मिथ्यात्व नहीं करते, मिथ्यात्व का त्याग है, आप सभी उपयोग की अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से धर्मात्मा है। और धर्मात्मा ही नहीं है, इतने बड़े धर्मात्मा होने से बड़ा संवर भी आपको हो चुका है और बड़ी निर्जरा भी हो रही है। जिन कर्मों का संवर हुआ है उन कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। तो कितने कर्मों का संवर हुआ है, कितने पाप कर्मों के बंध से आप सम्यक्त्व के कारण से बच रहे हैं? तो कहते हैं 41 प्रकृतियों के आश्रव से और बंध से आप बच रहे हैं, ये कम है क्या? कितना बड़ा धर्म है। चारित्र धारण करेंगे, मुनि भी बनेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में हम संवर नहीं कर सकते। प्रतिमाधारी भी बन जाएंगे तो भी इतनी बड़ी संख्या में, जो क्वांटिटी कर्मों की संख्या क्वांटिटी 41 है, सम्यक दर्शन धारण करने मात्र से 41 पाप कर्म के बंध से बच गया। एकाएकी ही जैसे लॉटरी लग गया हो, सम्यक दृष्टि को तो एकाएकी ही लॉटरी लग जाता है। और फिर कर्मों का बंध भी करता है तो उसमें एक विशेषता आती है, उसमें बहुत फर्क आता है। क्योंकि मिथ्यात्व को जब करता था तब पापानुबंधी पुण्य को करता था, यानी पुण्य भी ऐसा पुण्य जिसमें पाप मिश्रित हो, पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी, यानी पाप कर्मों का बंध अधिक और पुण्य कर्मों का बंध कम, क्वांटिटी में कम, ऐसा कर्मों का आश्रव और बंध मिथ्यात्व के काल में करता था, अब उन्होंने क्या समझा? आवश्यका अपरिहानि भावना की दिन उपदेश सुना और उन्होंने मिथ्यात्व त्याग दिया और सम्यक्त्व को धारण कर लिया। अब वो कहता है, मैं कभी भी वीतरागी सच्चे देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामय जिनवाणी शास्त्र, इन तीन को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करूँगा, उपासक नहीं बनूँगा, ऐसा संकल्प ले लिया। तो उसी वक्त अब उपयोग के दृष्टिकोण से जो पापानुबंधी पुण्य का आश्रय होता था, उपयोग के बीमार होने से होता था। हमारा उपयोग बीमार था, अब स्वस्थ हो गया सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कारण। अब यह सम्यक दर्शन में हमारा उपयोग उलझ गया। ये सम्यक दर्शन ही अपना है, बाकी सब पराया है। सम्यक दर्शन ही आत्मा की संपत्ति है, वैभव है, बाकी सब पराया है। अपना क्या है, पराया क्या है, ये समझकर किसको ग्रहण करना और किसको ग्रहण नहीं करना, इस बारे में यदि हम सोचते हैं, तो अनावश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, ये भी समझ में आ जाता है। तो देखो, अशुभोपयोग को धारण करना आवश्यक या अनावश्यक? अनावश्यक। और शुभोपयोग को धारण करना, सम्यक्त्व को धारण करना, जिसके धारण करने के बाद हमारा ज्ञान भी विवेकपूर्ण ज्ञान हो जाता है, कल्याणकारी बन जाता है, आत्मा का कल्याण जो निरंतर होकर हो सकता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों ही मिलकर के आत्मा का कल्याण निरंतर करने लगते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद हमारा उपयोग शुभोपयोग के रूप में होता है, अशुभोपयोग की बीमारी दूर हो जाती है, शुभोपयोग के साथ स्वस्थता का अनुभव करने लगता है, ऐसे स्वस्थता का, ऐसे सुख का हमको अनुभव करना आवश्यक है क्या अनावश्यक? तो ये आवश्यक क्रिया अनादिकाल से इस जीव ने कभी नहीं किया, अब भी करने के भाव है या नहीं है? है ना? आवश्यक क्रिया करोगे? हाँ। पापानुबंधी पुण्य से बचोगे और पुण्यानुबंधी पुण्य को बांधोगे? अपनी आत्मा के आराधना को करोगे? अपने आत्मा के वैभव को समझोगे? समझ करके उसी वैभव को पाने का प्रयास करोगे? 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 फिर हाथ नीचे क्यों? जय हो, जय हो, जैन शासन की जय हो, यही तो जैन धर्म की प्रभावना है। ऊपर हाथ उठा के रखना, देखो ये सब चैनल में आने वाला है, ये चैनल जिनवानी चैनल पर जिनवानी का उपदेश, और आपके हाथ शुभोपयोग के लिए, दोनों ऊपर उठे हैं, उठा, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हमारे जीवन के लिए, आपके लिए हम संकल्प देते हैं आज, हमारे लिए अशुभोपयोग अनावश्यक है और शुभोपयोग आवश्यक है, हम शुभोपयोग को धारण करके आत्मकल्याण करेंगे, शुभोपयोग को धारण करके आत्मा का कल्याण करेंगे। इस समोचरण में बैठ करके हमने अपने आत्मा के वैभव को जान लिया, इस समोचरण में बैठ करके आत्मा की महिमा को जान लिया, आत्मा में जो अनंत सुख छिपा हुआ है उसका मार्ग पता चल गया, वह मार्ग सम्यक दर्शन से पता चल गया, और आज हम शुभोपयोगी बन गए। ये धन्य हैं हम लोग, समोचरण में बैठे हुए सभी धन्य हैं। अब आपने अशुभोपयोग को अनावश्यक समझा है और शुभोपयोग को आत्मा का वैभव समझ करके, ये अपना समझ करके और उसको पराया समझ करके, दुख का कारण समझ करके जो त्यागा है और सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण किया है इस उपदेश के माध्यम से, तो इस उपदेश के माध्यम से इसी समय स्टार्ट हो गया आपका। क्या क्या स्टार्ट हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य बंधना शुरू हो गया, अब ये रुकने वाला नहीं है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य आपको चक्रवर्ती भी बना सकता है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य के काल में आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकते हैं। इस पुण्य के उदय से आप तीन गति से बच गए। कौन कौन से गति से बच गए? नरक से बच गए, त्रियंच गति से बच गए, मनुष्य गति से बच गए। मनुष्य गति में नहीं जा सकोगे अब, भविष्य में जा सकेंगे, लेकिन इस मनुष्य पर्याय से कहाँ जाओगे? एक ही गति में जाओगे। किस गति में? देव गति में जाओगे। देव गति में चार जगह हैं, कहाँ जन्मोगे? वैमानिक देव बन करके जन्मोगे, हीन देवों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। देखो आप क्या क्या नहीं बनोगे। ये धर्म की महिमा है, ये सम्यक्त्व की महिमा है, सम्यक दर्शन धारण करने का ये परिणाम है। आप क्या क्या नहीं बनोगे? कभी भी व्यंतर देव बन करके दूसरे को नहीं सताओगे। दूसरे को सताने वाला व्यंतर यह धर्मात्मा कभी नहीं बनता। दूसरे को सताने वाले जो व्यंतर देव होते हैं ना, वे अनावश्यक को आवश्यक समझ करके अशुभोपयोग के साथ मिथ्यात्व करते हुए, अनायतनों का सेवन करते हुए, अज्ञानवश विपरीत क्रिया जो करते हैं और अपने आत्मा के सम्यक्त्व के निधि को भूल करके जब वो इस क्रिया में उलझ जाते हैं, तब जो है ये पापानुबंधी पुण्य बंधता है और उसी पुण्य के फल से मंदकषायी बनकर देवायु को बांधकर यदि देवगति में जन्म भी लेता है तो वह व्यंतर देव बनता है और व्यंतर देव बन करके सबको सताता है। हैं? दूसरे को सताने वाले देव पर्याय में जाना चाहते हो क्या? नहीं, हमको सताना नहीं है, भगवान की आज्ञा मानना है। भगवान ने कहा है जीवो और जीने दो, सभी सुखी रहे, मैं किसी को सताना नहीं चाहता, मैं भी सुखी रहूं और मेरे सुख जैसा सुख पर जीवों में भी हो, ये मैं चाहता हूं। तो फिर व्यंतर पर्याय तो ऐसी पर्याय है जो दूसरे को भी सता सकता है। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उनको भी सताने के भाव आ गए। किस देव के लिए भाव आ गए? ये कौन सी पर्याय वाला कमठ है, कौन सी पर्याय वाला देव था? ज्योतिषी देव था, ज्योतिषी देव था, ऊपर से आया था। ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद वगैरह जो होते हैं ना, ये ज्योतिषी देव हैं, ये ज्योतिषी विमान हैं। इन विमानों में ज्योतिषी देव वास करते हैं, इनमें से एक था वो। और पूर्व भाव के बदला लेने के लिए पार्श्वनाथ भगवान तपस्या में लीन हैं और उन पर उपसर्ग करने के लिए आया और वह 7 दिन तक नाना प्रकार का उपसर्ग करके देखा। बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की, पानी बरसाया, तूफान चलाया, बहुत प्रकार के कष्ट दिए, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करके भी देखा। लेकिन भगवान का इतना बड़ा पुण्य था कि 7 दिन तक उनका बाल बंका कर नहीं सका और 7 दिन के बीच में पार्श्वनाथ भगवान में अपने ही उस पर्याय में, यानी तीर्थंकर की पर्याय में, गृहस्थ अवस्था में जिन 2 सांपों को बचाया था नमोकार मंत्र सुना करके, वे सांप मरते समय तीर्थंकर के मुख से नमोकार मंत्र सुन करके वे देव बन गए। मिथ्यात्व के साथ थे, वो कोई सम्यक दर्शन धारण नहीं किए थे। ऐसे मिथ्यात्वी जीवों को, दो जीवों को उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। उनके पास अशुभोपयोग था, प्रथम गुणस्थान था, अधर्म था, और अधर्म के साथ रहते हुए नमोकार मंत्र को सुनते समय मंद कषाय हो गई, तो मंद कषाय के फल स्वरूप वो देव गति का बंद करते हैं और वो दोनों ही सर्प सर्पिणी भवनवासी पर्याय में उत्पन्न होते हैं। एक कोई भवनवासी बना, ये क्या आता है इस आगम में तो ये स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये गए कहां गए, इन तीन पर्यायों में से एक पर्याय में गए, कहीं भी गए हो, लेकिन हीन पर्याय में गए, तीन पर्याय में गए। हाँ, धर्णेन्द्र यदि है तो भवनवासी है, वैमानिक तो है ही नहीं। धर्णेन्द्र यह नाम तो भवनवासियों में आता होगा, वो उसमें ही है। असुर कुमार होगा, असुर कुमार भवनवासी कहलाते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक् कुमार आता है तत्वर सूत्र में, उनमें वो गया होगा और वहां जाकर के वह देव बना। और वो सर्पिणी जो थी उसकी स्त्री पर्याय छेद नहीं हुआ, अगर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया होता तो वो पद्मावती नहीं बनती, पुरुष पर्याय में जन्म होता। देव को भी अगर देव इसको त्रियंश गति के त्रियंशनी को भी अगर सम्यक दर्शन हुआ तो नियम से वैमानिक देवों में जन्म लेता है और देव बन करके जन्म लेता है, देवी बन करके जन्म नहीं लेता। ये जैन धर्म, जैन सिद्धांत है, भगवान की साक्षात वाणी है, ये भगवान की साक्षात वाणी है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए क्या नहीं? भगवान की वाणी पर ही हम विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे? ये भगवान की वाणी पर विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है, और विश्वास करके उसका तदनुरूप आचरण करना, ये हमारा सम्यक तो धर्म हो गया, 25 दोषों से रहित धर्म हो गया। हम यदि स्त्री पर्याय से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व को ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही स्त्री पर्याय में जाता है। भले ही तीर्थंकर की माता बन करके जो जीव आ रहा है, स्त्री पर्याय में जन्म ले रहा है, आर्यखंड में जन्म ले रहा है, मनुष्य पर्याय में ही आ रहा है, यह भी जीव मिथ्यात्व के साथ ही आता है। तीर्थंकर की माता 9 महीने तक जिन्होंने 3 लोक के नाथ को गर्भ में धारण करने का सौभाग्य मिला है, ऐसी तीर्थंकर की माता को भी स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है और वह मरण करके किसी पूर्व भव से यहाँ पर आ रहा है, उस जीव के लिए भी मिथ्यात्व के साथ ही आना पड़ेगा। ये सिद्धांत है जैन दर्शन, ये है, ये तत्व है। और फिर स्त्री पर्याय में उत्पन्न होने के पश्चात तीर्थंकर की माता को सम्यक दर्शन कब होगा? तो 8 साल व्यतीत होने के बाद ही होगा। जन्म लेकर 8 साल व्यतीत होने के बाद ही उस तीर्थंकर की माता को सम्यक धारण करने का अवसर प्राप्त होगा। अब सम्यक दर्शन को तो उन्होंने धारण कर लिया, सम्यक को धारण कर लिया, लेकिन प्रतिमा धारण नहीं किया, मान के चलो प्रतिमा नहीं लिया। सम्यक दर्शन तो धारण कर लिया, 4th गुणस्थान हो गया, मिथ्यात्व को तो त्यागा, सम्यक दर्शन धारण कर लिया और 8 साल की उम्र में धारण कर लिया तीर्थंकर की माता ने सम्यक दर्शन को, तो धारण कर लिया। अब मान लो सम्यक के साथ ही मरण होता है और प्रतिमा उसने नहीं लिया, सम्यक के साथ ही मरण होता है, प्रतिमा धारण नहीं किया, तो तीर्थंकर की माता तो वर्तमान पर्याय में तो स्त्री पर्याय में है, लेकिन सम्यक दर्शन साथ में है, सम्यक तो धर्म की रक्षा कर रही है, ये आवश्यक धर्म है, अनावश्यक में नहीं जा रही है, आवश्यक के साथ बंद करके रही और मरण के काल में उस सम्यक के साथ ही तीर्थंकर की माता का मरण हुआ, तो अगली पर्याय पुरुष की रहेगी क्या स्त्री की रहेगी? नियम से, यही तो नियम समझना है अपने को, यही इन्हीं बातों का चिंतन हमने कभी नहीं किया, इन बातों को हमने विचार नहीं किया, इन बातों को हमको सुनाने वाले कोई नहीं मिले, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, सुनाने वाले नहीं है ना, नहीं हम पढ़ते हैं उसको, पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ते, पढ़ने के चक्कर में ही हम नहीं पढ़ते, और पढ़ने के चक्कर में हम नहीं पढ़ते तो इसका अर्थ ये हो गया अनावश्यक में ही पूरा आपका समय जाता होगा। एक घंटा स्वाध्याय करने के लिए जिसको समय नहीं है, ये तो आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है, लेकिन हमने जरा भी समय नहीं निकाला इन शास्त्रों को, ऐसे सिद्धांतों को समझने के लिए, कैसे स्त्री पर्याय के जन्म से हम बच पाएंगे? स्त्री पर्याय से बचना है क्या? नहीं, अंतरंग आत्मा से पूछो, हे आत्मा अनादिकाल से स्त्री पर्याय में जन्म लेते 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 परेशान हो गया, इस परेशानी से दूर होने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी ही शरण है, उस वह वाणी क्या कह रही है? जिनवाणी माता की बात मान ले आत्मा, अगले साल तक ये सोचना, 10 दिन अगर ये 10 लक्षण पूजन करना है तो यही करना है, निमंत्रण है आप सब लोगों को, 16 कारण भावना को भी जोड़ करके, क्योंकि दोनों का उपदेश सुनने में कितना आनंद आ रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, आप घर बार को भूल करके बैठे हैं यहाँ, और ऐसा ही आनंद समोसरण में आता है, भगवान के चरणों में ऐसा ही आनंद आता है, और वो 8वीं सभा में प्रवेश करके बैठ गया तो बाहर के भोजनशाला नाटशाला सबको भूल जाता है, घर भी भूल जाता है, और भगवान की वाणी में मग्न हो जाता है, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है, प्रति साल होना चाहिए, प्रति वर्ष यहाँ होना चाहिए। आओगे 16 दिन घर छोड़ करके यहाँ आएंगे? आओ आओ आओ, पुरुषार्थ करो, और यह पुरुषार्थ आपका सफल हो, आपके आत्मा का कल्याण हो, इसी भावना के साथ बहुत समय हो गया, अहिंसा परमो धर्मः।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जयपाल चिंचवाड़े, सौभाग्यवती भावना अमित चिंचवाड़े, तन्वी अमित चिंचवाड़े, श्री आश्चिन आदगौंडा पाटिल, सौभाग्यवती शुभांगी आश्विन पाटिल, तन्वी नक्षत्रा हर्षवर्धन तन्वी।